एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो सच में मानवीय सहनशीलता और जिसे कहते हैं ना जुझारूपन, उसकी हदों को छू लेती है।
जी हाँ, ये कहानी लॉरा हिलेनब्रांड की बहुत ही मशहूर किताब अनब्रोकन में है। पूरा नाम है अनब्रोकन, अ वर्ल्ड वॉर टू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल रिजिलियंस एंड रिडेम्पशन, और ये कहानी है लुई ज़ैम्परिनी की।
लुई ज़ैम्परिनी, नाम सुनते ही एक असाधारण जीवन की तस्वीर उभरती है। इतालवी अमेरिकी आप्रवासी परिवार का बेटा, कैलिफोर्निया की गलियों का एक शरारती बच्चा।
बिल्कुल, और फिर वही बच्चा ओलंपिक धावक बना, फिर दूसरे विश्व युद्ध में बॉम्बार्डियर, फिर समुद्र में खो गया, और उसके बाद युद्धबंदी के तौर पर जो सहा वो तो कल्पना से परे है।
सही कहा। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, मतलब ज़ैम्परिनी का जीवन हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है, कैसे इंसान भयानक से भयानक हालात में भी टिका रह सकता है।
हाँ, और कैसे अपनी गरिमा, अपना सम्मान बचाए रख सकता है इतनी क्रूरता के सामने भी, और फिर वो क्षमा वाली बात, इतने गहरे जख्मों के बाद माफ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है।
और इस कहानी को हम तक पहुंचाया लॉरा हिलेनब्रांड ने। उनकी भी अपनी कहानी है, वो खुद क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से जूझ रही थी।
जी, और इसी हालत में उन्होंने 7 साल इस किताब पर काम किया, जबरदस्त रिसर्च की, 75 से ज्यादा बार लुई ज़ैम्परिनी का इंटरव्यू लिया। शायद उनकी अपनी तकलीफों ने उन्हें लुई के दर्द को समझने में एक खास नजर दी।
हाँ, हो सकता है। तो चलिए ज़ैम्परिनी की इस अविश्वसनीय यात्रा को जरा करीब से देखते हैं, उनके शुरुआती सालों से शुरू करें, टॉरेंस कैलिफोर्निया में जम।
हाँ, और बचपन तो जैसा आपने कहा काफी उपद्रवी था, मतलब चोरी, मारपीट, नियम तोड़ना, ये सब चलता रहता था, लग रहा था कि लड़का हाथ से निकल गया।
लेकिन फिर उनके बड़े भाई पीट ज़ैम्परिनी सामने आए।
जी,
पीट ने देखा कि लुई में बहुत ऊर्जा है, बस गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने उसे दौड़ने में लगा दिया। वो सिर्फ भाई नहीं रहे, कोच बन गए, मेंटोर बन गए।
और नतीजा?
कमाल का बदलाव आया। वो लड़का जो इलाके का बदमाश था, वो हाई स्कूल का ट्रैक स्टार बन गया। टॉरेंस टॉर्नेडो कहने लगे लोग उन्हें।
बिल्कुल, और ये बदलाव उन्हें कहां तक ले गया? 1936 के बर्लिन ओलंपिक तक।
हाँ, 5,000 मीटर दौड़ में पदक तो नहीं जीत पाए वो।
नहीं, पदक नहीं मिला, पर उनका जो आखिरी लैप था वो इतना जबरदस्त था कि कहते हैं एडोल्फ हिटलर तक ने नोटिस किया था।
इसी दौर में वो जिद, वो इच्छा शक्ति उनमें आई। पीट हमेशा कहते थे ना,
हाँ,
अ मोमेंट ऑफ पेन इज वर्थ अ लाइफटाइम ऑफ ग्लोरी, मतलब दर्द का एक पल जीवन भर की शान के बराबर है।
ये बात उनके मन में बैठ गई।
लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ओलंपिक का सपना तो पीछे छूट गया, और लुई अमेरिकी सेना की वायुसेना में भर्ती हो गए, बॉम्बार्डियर बने, B-24 लिबरेटर विमान में। उन विमानों को मजाक में फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे।
हाँ, क्योंकि वो खतरनाक माने जाते थे, और प्रशांत महासागर में उनके मिशन वाकई बहुत खतरनाक थे। एक बार तो उनके प्लेन सुपरमैन में दुश्मन की गोलियों के लगभग 600 छेद हो गए थे, सोचिए।
बाप रे। इसी दौरान उनकी दोस्ती पायलट रसल एलन फिलिप्स से हुई, जिन्हें सब फिल कहते थे।
जी, फिल उनके बहुत अच्छे दोस्त और साथी बने, और फिर वो दिन आया, 27 मई 1943।
एक बचाव मिशन पर थे वो लोग, और उनका विमान ग्रीन हॉर्नेट, जो पहले से ही ठीक नहीं था, वो क्रैश हो गया प्रशांत महासागर में।
हाँ, 11 लोग थे विमान में, सिर्फ 3 बचे, लुई, फिल और एक और साथी फ्रांसिस मैकनमारा, जिन्हें मैक कहते थे।
और यहां से शुरू हुआ वो दौर, 47 दिन, एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर खुले समुद्र में।
उफ, वो 47 दिन, भूख, प्यास, सूरज की जलन, शार्क मछलियां जो लगातार राफ्ट के चक्कर काटती थीं, टकराती थीं, और तो और एक जापानी बॉम्बर ने उन पर हमला भी किया।
अविश्वसनीय, जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, कच्ची मछली खाना, समुद्री पक्षी अल्बट्रॉस पकड़ना, बारिश का पानी इकट्ठा करना।
जी, और मानसिक तनाव अलग, मैक तो पहले दिन घबराहट में सारी इमरजेंसी चॉकलेट खा गया था, बाद में उसी राफ्ट पर उसकी मौत हो गई।
ऐसे में लुई ने हिम्मत बनाए रखी, फिल का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी माँ के खाने की रेसिपी सुनाते थे, भूगोल के सवाल पूछते थे।
हाँ, लीडरशिप दिखाई उन्होंने, लेकिन 47 दिन बाद जब वो मिले तो वो मौत के मुंह में ही थे एक तरह से, और उन्हें बचाया जापानी नौसेना ने।
लगा कि चलो बच गए, लेकिन असल में एक और भयानक अध्याय शुरू होने वाला था।
बिल्कुल, उन्हें पहले क्वाज़ेलिन आटोल ले जाया गया, जिसे कैदी एग्जीक्यूशन आइलैंड यानी मौत का टापू कहते थे। फिर ओफुना, ओमोरी, नाओएत्सु, कई जापानी युद्धबंदी शिविरों में रखा गया, करीब 3 साल।
और ये कैंप्स, ये सिर्फ जेल नहीं थे, यहाँ का मकसद था कैदियों की इंसानियत छीन लेना। भूखमरी, बीमारियां, बे इंतहा क्रूरता, जबरदस्ती काम करवाना।
हाँ, अमानवीयकरण। और ओमोरी और नाओएत्सु कैंप में लुई का सामना हुआ उस शख्स से जो उनके बुरे सपनों में हमेशा आता रहा, कॉर्पोरल मुत्सुहिरो वातानाबे,
द बर्ड। कैदी उसे इसी नाम से जानते थे।
जी, द बर्ड एक सिडिस था, बहुत क्रूर, और उसने न जाने क्यों लुई को अपना खास निशाना बना लिया था। उसका एक ही मकसद था, लुई की हिम्मत को, उसकी आत्मा को तोड़ना।
और वो लकड़ी के बीम वाली घटना नाओएत्सु कैंप की, वो तो रोंगटे खड़े कर देती है।
हाँ, द बर्ड ने हुक्म दिया भूखे कमजोर लुई को कि वो एक भारी लकड़ी का बीम अपने सिर पर उठाए रखे, और कहा कि अगर बीम गिरा तो गोली मार देगा।
और लुई ने,
लुई ने वो बीम उठाए रखा 37 मिनट तक। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, ये उसकी जिद थी, उसकी गरिमा थी, जो कह रही थी कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते।
कमाल है। और बाकी कैदी, क्या वो भी किसी तरह का प्रतिरोध करते थे?
हाँ, छोटे छोटे तरीकों से, कभी खाना चुरा लिया, कभी मशीनों में तोड़ फोड़ कर दी, आपस में खबरें फैलाईं। ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं था, ये अपनी इंसानियत को, अपनी पहचान को बचाए रखने के तरीके थे।
फिर अगस्त 1945 में युद्ध खत्म हुआ, लुई और बाकी लोग आजाद हुए, अमेरिका लौटे तो हीरो की तरह स्वागत हुआ।
हाँ, बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर जो जख्म थे युद्ध के, वो बहुत गहरे थे।
यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, युद्ध के बाद का जीवन। लुई गंभीर PTSD से जूझ रहे थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
जी, भयानक बुरे सपने आते थे उन्हें, खासकर द बर्ड के। वो शराब में डूब गए, उनके दिमाग में बस एक ही चीज थी, जापान जाकर द बर्ड से बदला लेना।
उनकी शादी भी हुई सिंथिया एप्पलवाइट से, लेकिन रिश्ते में तनाव था।
बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि युद्ध जीतने वाला ये हीरो अपनी जिंदगी की जंग हार रहा है।
लेकिन फिर एक और बड़ा मोड़ आया। उनकी पत्नी सिंथिया के कहने पर वो बिली ग्राहम की एक दान सभा में गए, शायद बेमन से ही गए थे।
हाँ, शुरू में तो वो वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें वो राफ्ट वाले दिन याद आ गए। वो वादा याद आ गया जो उन्होंने भगवान से किया था कि अगर बच गया तो अपनी जिंदगी उसकी सेवा में लगा दूंगा।
और कहते हैं उसी रात कुछ बदला।
हाँ, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ उन्हें, और उसके बाद उनके बुरे सपने बंद हो गए, उन्होंने शराब छोड़ दी, और जो नफरत थी द बर्ड के लिए, वो धीरे धीरे शांति और क्षमा में बदलने लगी।
ये वाकई बड़ा बदलाव था।
और उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया, इस पर अमल भी किया।
जी, 1950 में वो जापान गए, सुगामो जेल में उन गार्ड से मिले जिन्होंने उन पर जुल्म किए थे, और उन्हें माफ कर दिया। द बर्ड तब तक फरार था, वो नहीं मिला, लेकिन लुई ने उसे भी एक खत लिखकर अपनी माफी भेज दी।
इसके बाद तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी, परेशान लड़कों के लिए कैंप्स खोले, अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित किया, क्षमा का संदेश फैलाया, और 1998 में नागानो विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च लेकर दौड़ना, और उसी इलाके से गुजरना जहां कभी उनका POW कैंप था। ये उनकी पूरी यात्रा का एक प्रतीक बन गया।
तो अगर हम लुई ज़ैम्परेनी के जीवन के मूल दर्शन या मूल्यों को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहली चीज तो यही है, अदम्य मानवीय आत्मा, है ना, हार न मानने की जिद।
बिल्कुल, वो जो टिके रहने की इच्छा है, चाहे दर्द हो, डर हो, वो बीम वाली घटना सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, वो ऐलान था कि तुम मेरा शरीर तोड़ सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं।
दूसरा अहम सबक है गरिमा का। उन POW कैंप्स का मकसद ही था इंसान की गरिमा छीन लेना, उसे जानवर बना देना।
जी, और कैदियों के वो छोटे छोटे प्रतिरोध के काम, वो अपनी इंसानियत को बचाने की लड़ाई थी। अपना आत्मसम्मान बनाए रखना, ये अपने आप में उत्पीड़न के खिलाफ एक हथियार बन जाता है।
और कहानी में हमें इंसानियत के दोनों पहलू दिखते हैं, द बर्ड जैसी भयानक क्रूरता भी, और वहीं कुछ गार्ड्स की दया, कैदियों का आपसी भाईचारा भी।
हाँ, ये युद्ध और पीड़ा का एक सच है, ये इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को उभार कर सामने ला देता है।
फिर वो PTSD वाली बात, युद्ध के अदृश्य घाव घर वापसी कहानी का अंत नहीं होती।
ये बहुत जरूरी बात है। लुई की कहानी दिखाती है कि ट्रॉमा के निशान कितने गहरे और लंबे समय तक रह सकते हैं, और इससे उभरने का रास्ता सीधा नहीं होता। मन का इलाज भी उतना ही जरूरी है जितना तन का।
और अंत में शायद सबसे बड़ा सबक क्षमा की शक्ति।
हाँ, क्योंकि जब तक लुई बदले की भावना से भरे थे, वो एक तरह से द बर्ड के मानसिक कैदी थे। माफ करके उन्होंने द बर्ड को नहीं बल्कि खुद को आजाद किया। ये एक बहुत शक्तिशाली सक्रिय चुनाव था।
अगर हम तीन सबसे अहम मोड़ चुने उनकी जिंदगी के, तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला तो वही है जब उनके भाई पीट ने उन्हें दौड़ने में लगाया। इसने न सिर्फ उन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाया, बल्कि उनमें वो अनुशासन और सहन शक्ति भरी जो बाद में काम आई।
बिल्कुल। दूसरा मोड़, वो 47 दिन राफ्ट पर। उसने साबित किया कि उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति किस हद तक जा सकती है। उनकी लीडरशिप भी वही निखरी।
और तीसरा मेरे लिए वो बिली ग्राहम की सभा वाला अनुभव, जब वो नफरत और निराशा में डूबे हुए थे। उस अनुभव ने उन्हें एक नई जिंदगी दी, क्षमा का रास्ता दिखाया।
तो इन सब बातों से, लुई की कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? मानवीय सबक क्या हैं?
देखिए, सबसे पहले तो वही जुझारूपन, मुश्किलों का सामना कैसे करें। बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर देखें। जैसे राफ्ट पर था, बस आज का दिन निकालना है, टिके रहना है।
और ट्रॉमा को समझना, ये मानना कि ऐसे अनुभवों के बाद दर्द होना, सपने आना स्वाभाविक है, मदद मांगना जरूरी है।
जी, और क्षमा की बात, ये समझना कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। गुस्से का बोझ लेकर चलना खुद को ही तकलीफ देता है।
और ये भी कि बुरे से बुरे अनुभव के बाद भी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढा जा सकता है। लुई ने अपने दर्द को दूसरों की मदद का जरिया बना लिया।
हाँ, अपने अनुभव को अर्थ देना, इसे बड़ी ताकत मिलती है। और उम्मीद, आशा बनाए रखना, जैसे वो राफ्ट पर अपनी माँ की रेसिपी याद करते थे। ये छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर तीन मुख्य बातें कहनी हो, तीन निष्कर्ष। पहला, एक भावनात्मक निष्कर्ष, मानवीय आत्मा की क्षमता, भयानक दर्द सहने की और उससे भी ज्यादा क्षमा के जरिए ठीक होने की। असली लड़ाई हमारे अंदर होती है।
दूसरा, एक बौद्धिक निष्कर्ष, अमानवीय व्यवहार के सामने अपनी गरिमा और पहचान बनाए रखना सिर्फ नैतिक रूप से जरूरी नहीं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी जिंदा रहने के लिए अहम है। ये एक तरह का प्रतिरोध है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक निष्कर्ष, क्षमा एक व्यवहारिक चीज है। ये हमें अतीत के बोझ से आजाद करती है। ये दूसरों को नहीं, हमें शांति देती है। नफरत के चक्र को तोड़ने का यही तरीका है।
लुई ज़ैम्पेरिनी की कहानी हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अपने आंतरिक शक्ति के बारे में, मुश्किलों से लड़ने के हमारे अपने तरीकों के बारे में और क्षमा की संभावना के बारे में। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।